संडे, हवेली का दिन। रविवार की सुबह हवेली में हमेशा कुछ अलग होती थी। हफ्ते भर की भाग दौड़, नियम और सख्ती जैसे इस दिन खुद बखुद ढीले पड़ जाते थे। किचन से बर्तनों की आवाज़ें तो आ रही थीं, पर उनमें वो जल्दबाजी नहीं थी। नौकर आराम से काम कर रहे थे। कहीं कहीं हंसी की हल्की सी गूंज भी सुनाई दे जाती थी। दोपहर ढलने लगी थी। आंगन में धूप छन्नी सी गिर रही थी। पीपल के पत्तों से छनकर आती रोशनी जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। ड्राइंग रूम में खिड़कियां खुली थीं। हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी और पुराने फर्नीचर से आती लकड़ी की सौंधी खुशबू घर में अपनापन भर रही थी। शकुंतला सोफे पर बैठी पुरानी मैगजीन पलट रही थी। उनकी आंखें पन्नों पर थीं, पर ध्यान कहीं और। उधर रत्ना देवी अपने हमेशा वाले कोने में सीधी पीठ टिकाकर बैठी थी। चश्मा नाक पर टिका था और नज़र हर हलचल पर। तभी गेट के बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। शकुंतला ने सिर उठाया। नौकर ने झांक कर देखा और जैसे ही नंबर प्लेट पहचानी तुरंत भीतर आवाज़ लगाई। मालकिन, अदिति बिटिया आई हैं। शकुंतला एकदम सीधी हो बैठी। अदिति, आवाज़ में हल्की सी हैरानी थी और अगले ही पल चेहरे पर फैलती मुस्कान। इतने दिनों बाद रत्ना देवी की आंखों में भी खुशी की चमक उभर आई। आ गई बिटिया, उन्होंने चश्मे के ऊपर से देखा। अगले ही पल ड्राइंग रूम के दरवाजे पर अदिति दिखाई दी, नीली जीन्स जिसमें उसका आत्मविश्वास बिना कुछ कहे छलक रहा था, ऊपर हल्के रंग की लंग कुर्ती, आगे से बीच में कटी हुई, गले से सीने तक हल्की सी स्लीट, ना ज्यादा उघड़ी ना ज्यादा ढकी, बस उतनी जितनी उसकी पर्सनालिटी थी। बाल खुले हुए थे, हल्का सा मेकअप और आंखों में वही पुराना अपनापन जो जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करना उसे आता था। वो दो कदम आगे बढ़ी, झुककर पैर छुए। नमस्ते बुआ जी, उसके लहजे में नम्रता भी थी और एक साफ सी समझदारी भी। शकुंतला ने उसके कंधे थाम लिए। अरे अदिति, आजा आजा, रत्ना देवी ने इशारे से बुलाया। इधर बैठ बिटिया। अदिति मुस्कुराकर उनके पास आकर बैठ गई। नौकर को इशारा किया गया। चाय पानी लाओ, शकुंतला बोली, और कुछ नमकीन भी। ड्राइंग रूम में अचानक एक अपनापन खुल गया। शकुंतला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आज तो बड़ी सजी समरी आई है। अदिति हंसती, संडे है बुआ जी, सोचा थोड़ा अलग लगा जाए। फिर बिना रुके बिल्कुल सहज लहजे में, वैसे आर्यन कहाँ है? शकुंतला ने पलक झपकाई। वो शायद अपने कमरे में होगा, पढ़ रहा होगा। बुलाऊं? अदिति ने तुरंत हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, फिर थोड़ा आगे झुककर आवाज़ में गंभीरता भरते हुए, आज मैं आर्यन से मिलने नहीं आई। शकुंतला और रत्ना देवी दोनों चौंकी। तो? शकुंतला ने पूछा। अदिति ने हल्की सी सांस ली, एक पल को जैसे अपने शब्दों को तौल रही हो। आज मैं आप दोनों से एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। ड्राइंग रूम में खामोशी उतर आई। रत्ना देवी सीधी हो बैठी। बोल बिटिया, खुलकर कहना। अदिति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, वही बातें जो पिछली रात फ़ोन पर आर्यन से हुई थीं। पसंद, समझ, परिवार और फिर शादी। उसकी आवाज़ में न झिझक थी न डर। मैं जानती हूँ, वो बोली, आर्यन थोड़ा हिचकता है, पर मैं साफ कहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। शकुंतला बीच बीच में सिर हिलाती रहीं। रत्ना देवी चुपचाप सुनती रहीं, जैसे हर शब्द दिल में बैठा रही हूँ। जब अदिति चुप हुई तो रत्ना देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, ये फैसला वो अकेला नहीं करेगा। अदिति ने उत्सुकता से देखा। उसका बाप भी मानेगा, रत्ना देवी बोली, हम है ना जल्द ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। एक पल को अदिति की आंखें चमक उठी। वो उठी, झुककर रत्ना देवी के गले लग गई। थैंक यू दादी, आप नहीं जानती मुझे कितनी राहत मिली है। रत्ना देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बस खुश रहो। उसी वक्त सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। आर्यन नीचे उतर रहा था, हाथ में किताब, टी शर्ट और ट्रैक पैंट, बाल थोड़े बिखरे हुए। जैसे ही उसकी नज़र ड्राइंग रूम पर पड़ी वो ठिठक गया। अदिति, दिल ने एक जोर का उछाल मारा। ये यहाँ क्या कर रही है? दिमाग तेजी से चलने लगा, कहीं कुछ तय तो नहीं हो गया? उसने चेहरे पर सामान्य सी हैरानी ओढ़ी और आगे बढ़ गया। अदिति, तुम यहाँ? अदिति ने उसकी तरफ देखा, मुस्कान वही, शांत, आत्मविश्वासी और थोड़ी सी रहस्यमयी। हाँ, संडे है तो सोचा मिलाऊं, आर्यन ने
शकुंतला और रत्ना देवी की तरफ देखा। दोनों के चेहरे कुछ ज्यादा ही संतुष्ट थे। उसके भीतर घबराहट धीरे धीरे गहराने लगी। कुछ तो हुआ है, पर पूछने की हिम्मत अभी नहीं जुटी। ड्राइंग रूम की हवा अब भारी थी और आर्यन जानता था ये मुलाकात सिर्फ संडे की चाय तक सीमित नहीं रहने वाली। आर्यन का कमरा थोड़ी देर बाद। दरवाजा बंद होते ही कमरे की खामोशी अजीब सी भारी लगने लगी। खिड़की से आती धूप पर्दे के किनारों पर अटक कर कमरे में बिखर रही थी, पर आर्यन का ध्यान कहीं और था। वो आगे बढ़ा, किताब बिस्तर पर रख दी और बिना भूमिका बांधे बोला, आज यहाँ कैसे? अदिति एक पल ठिठकी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बिल्कुल भोले लहजे में बोली, सोचा सब साफ कर दूं। कल फोन पर जो बात हुई थी ना, उसने धीरे से कहा, मैंने वही सब बुआ जी और दादी को बता दिया। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। क्या? आवाज धीमी थी पर उसमें नाराजगी साफ थी। अदिति, मैंने कहा था ना, अभी शादी का टाइम सही नहीं है। वो एक कदम आगे आया, फिर तुमने ये सब उनसे क्यों कह दिया? अदिति की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मुझे लगा, उसकी आवाज भर्रा गई, अगर घर वाले जानेंगे तो चीजें आसान होंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली, तुमने मेरी बात समझी ही नहीं, मुझे अभी वक्त चाहिए, इतनी जल्दी सब तय नहीं करना था। अदिति की आंखें भर आईं, उसने पलकें झपकाईं, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माफ करना, वो बहुत धीरे से बोली, शायद मैं ज्यादा उम्मीद ले आई थी। कमरे में सिर्फ उसकी टूटती सांसों की आवाज रह गई। आर्यन कुछ कहने को था पर शब्द गले में अटक गए और अदिति की आंखों में नमी ही नहीं डर भी था।